स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 1 अगस्त और दिन गुरुवार। अमेरिकी फेडरल बैंक ने 2008 के बाद पहली बार ब्याज दर घटाया।
We decided today to lower the target for the federal funds rate by a quarter.
उन्नाव रेप पीड़िता की कार को टक्कर मारने वाले ट्रक ड्राइवर का परिवार भी दुखी।
आप यहाँ जंगल में पड़ी हैं, क्या जाने कि कहाँ लड़का कहाँ बच्चा का, जब कोई सोचना नहीं।
इसराइल में होने वाले चुनाव में क्या नेतन्याहू की विरासत दांव पर लगी है?
इसराइली पब्लिक को डिसाइड करना पड़ेगा कि इनको आगे प्रधानमंत्री चुनना है कि नहीं। सिचुएशन ऐसी आ गई है कि बीबी नेतन्याहू का कोई अल्टरनेटिव उभरना चाहिए, लेकिन अभी कोई दिखता नहीं।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से सुनिए। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने मुख्य ब्याज दरों में 0.25% की कटौती का ऐलान किया है। पिछले एक दशक से ज्यादा वक्त में ये पहली बार है जब बैंक ने ब्याज दरें घटाई हैं। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैंक के इस फैसले से खुश नहीं हैं। इसराइल की सरकार ने अपने एक चौंकाने वाले फैसले में कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 700 फलस्तीनी घर बनाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये मंजूरी नए घर बनाने के लिए है या उन घरों के लिए स्वीकृति है जो पहले से ही बने हुए हैं। उधर फलस्तीनियों का मानना है कि इसराइल द्वारा घर बनाने की मंजूरी देना कुछ और नहीं बल्कि जमीन हड़पने की साजिश है। पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख वालिद असफ ने रामल्ला स्थित अपने कार्यालय से कहा कि अगर आप हजारों फलस्तीनियों के घर तबाह कर रहे हैं और साथ ही 700 घर बनाने की मंजूरी दे भी रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। हम नहीं चाहते कि इसराइल हमें एक तरफ 700 घर बनाने की मंजूरी दे और दूसरी तरफ हमारे हजारों घर तबाह करे। पिछले साल इसराइल ने हमारे 585 घर नष्ट किए, उससे पहले 545 और उससे पहले साल उन्होंने हमारे 1115 घर तबाह किए। इसराइल को पहले ये तबाही रोकनी होगी। ये थे पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख वालिद असफ के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के गोमा शहर में इबोला की वजह से दूसरे व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। यह व्यक्ति शहर के एक स्वास्थ्य केंद्र में नाजुक हालत में भर्ती था। उसमें पिछले एक हफ्ते से इबोला के लक्षण नजर आ रहे थे। इससे पहले इसी महीने में गोमा शहर में इबोला की चपेट में आकर एक पादरी की मौत भी हो गई थी। गोमा शहर की आबादी 1 लाख से ज्यादा है और ये शहर रवांडा और कांगो की सीमा पर स्थित है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि वो इस बात से बेहद चिंतित हैं कि इबोला का वायरस घनी आबादी वाले इस पूरे इलाके में फैल सकता है। राहत एजेंसी टियर फंड के प्रोग्राम डायरेक्टर हिब्दावी मुहाइंदो ने इस बारे में बीबीसी से बात की। उन्होंने कहा कि वो स्थानीय लोगों को इबोला के खतरे के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक मुश्किल काम है। इस वक्त शहर के लोगों में डर और घबराहट का माहौल है। मुझे लगता है कि शहर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। अभी बहुत सारा काम किया जाना बाकी है। मिसाल के तौर पर टियर फंड धर्म गुरुओं के साथ मिलकर काम कर रहा है और लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहा है ताकि लोगों को बीमारी के बारे में एक विश्वसनीय स्रोत से पता चले। लेकिन शहर की आबादी 1-2 लाख की है और इसलिए काम पूरा नहीं हुआ है। अभी सबको ये पता नहीं चल पाया है कि इबोला वायरस का हमला होने के बाद क्या किया जाना चाहिए। ये थे राहत एजेंसी टियर फंड के प्रोग्राम डायरेक्टर हिब्दावी मुहाइंदो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी मीडिया में खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन की मौत हो गई है। हालांकि अधिकारियों ने अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि हमजा लादेन की मौत कैसे और कहां हुई। उन्हें अपने पिता का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा था। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ने बुधवार को होने वाले मिसाइल लॉन्च की बात स्वीकार की है। एजेंसी ने कहा है कि सेना ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है अगस्त की पहली तारीख और दिन है गुरुवार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ अपने मोबाइल फ़ोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत अमरीका से। अमरीका ने साल 2008 के बाद पहली बार ब्याज दरों में कटौती की घोषणा की है। अमरीका के केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को 0.25% घटाने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्याज दरों में कटौती की लगातार मांग करते रहे हैं। हालांकि बैंक का कहना है कि ये किसी राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला नहीं है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुनिए सिंधु वासनी से।
अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक ने पिछले एक दशक से ज्यादा वक्त में पहली बार ब्याज दरें घटा दी हैं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने ऐलान किया कि वो मुख्य ब्याज दरों में 0.25% की कटौती कर रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को केंद्रीय बैंक का ये फैसला पसंद नहीं आया। उन्होंने ब्याज दरों में और ज्यादा कटौती की मांग की थी। फेडरल रिजर्व बैंक के ऐलान के बाद ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में कहा कि पॉवेल ने हमेशा की तरह लोगों को निराश किया है। वहीं फेडरल बैंक के अध्यक्ष जेरम पॉवेल ने इन आरोपों से इनकार किया कि बैंक राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव के आगे झुक रहा है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा कि बैंक के कामकाज में राजनीतिक चिंताओं और राजनीतिक दबाव की कोई जगह नहीं है।
We decided today to lower the target for the federal funds rate by a quarter of a percentage
point. आज हमने ब्याज दरें 0.25% घटाने का फैसला किया है। मौजूदा वक्त में अमेरिका की अर्थव्यवस्था अनुकूल है और नए ऐलान इस अनुकूल हालात को बनाए रखने में मदद करेंगे, ये हमारा यकीन है। हमारा मकसद रोजगार और नौकरियों के लिए एक मजबूत बाजार बनाना है ताकि अमरीकी लोगों को इसका फायदा मिल सके। ये थे फेडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल के शब्द। अमरीकी अर्थव्यवस्था में इस वक्त अच्छी खासी नौकरियां देखने को मिल रही हैं। यहां मई महीने में बेरोजगारी पिछले 49 वर्षों के मुकाबले सबसे निचले स्तर यानी 3.7% पर थी। हालांकि आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि इनमें से बहुत सी नौकरियां सर्विस सेक्टर और कम आमदनी वाली हैं।
अमरीका में ब्याज दरों में कटौती बता रही थी सिंधु वासनी। और अब बात उन्नाव रेप पीड़िता की। उन्नाव रेप पीड़िता के कार हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और सीबीआई ने इस मामले में बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर समेत 10 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता के परिवार ने कुछ दिन पहले ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को चिट्ठी लिखकर जान को खतरा होने की आशंका जताई थी। अब चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से इस बारे में जवाब मांगा है। साथ ही पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट भी मांगी गई है। चीफ जस्टिस पीड़िता के पत्र के मामले में आज सुनवाई कर सकते हैं। उधर ट्रक मालिक और ड्राइवर के घर वाले इस मामले में अपनी सफाई दे रहे हैं। सुनिए समीरात्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
फतेहपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर ललौली कस्बे के औती गांव में एक छोटा सा कच्चा मकान है जिसमें ट्रक ड्राइवर आशीष पाल अपने 3 भाइयों और माँ बाप के साथ रहते हैं। बांदा से मोरंग लादने करीब 2 हफ्ते पहले वो ट्रक के क्लीनर मोहन के साथ निकले थे। रविवार को ट्रक पर लदा मोरंग रायबरेली में गिराकर वापस फतेहपुर आ रहे थे, तभी ये दुर्घटना हो गई। आशीष पाल की मां राजरानी बताती है।
आप यहां जंगल में पड़ी इनके आ जाने की कहां लड़का कहां बच्चा का जब कोई सोचना नहीं।
वो कितने दिन से नहीं थे यहां पे, कई दिन हो गया था?
अरे 8-10 दिन हो गए। पुलिस वाले ले गए हैं रायबरेली में, बस ये पता है आवा था तुम्हें बताओ थी।
मुलाकात करवाए कि नहीं?
मुलाकात नहीं भैया, उनसे नहीं भैया।
दुर्घटना के बाद पुलिस ने बताया कि ट्रक के ड्राइवर आशीष पाल, क्लीनर मोहन और ट्रक के मालिक देवेंद्र पाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों के परिजन इधर उधर पता लगाते रहे लेकिन उन्हें सही जानकारी कहीं नहीं मिली। बुधवार देर रात इन लोगों को इस बारे में जानकारी मिली। ट्रक ड्राइवर आशीष पाल के बुजुर्ग पिता 3 दिन के अपने संघर्ष को कुछ इस तरह बयां करते हैं।
28 तारीख को हादसा हुआ, शाम को हमको पता चला, रात में तो साधन नहीं है मेरे गांव से। सुबह आया बस से गया गुरबकसगंज, पता चला गुरबकसगंज थाना लगता है, वहाँ गया। 12:30 बजे पहुँचा तो दीवान जी से पूछा हमने, कहा सर आशीष पाल नाम का कोई ड्राइवर है? कहा यहाँ थे मोटर मालिक ड्राइवर कंडक्टर थे यहाँ, रायबरेली अधिकारी लोग ले गए। रायबरेली गए तो वहाँ भी नहीं मुलाकात हुई, अब बताया कि जेल चले गए।
रायबरेली के गुरबख्शगंज थाने में मौजूद ट्रक मालिक से 3 दिन बाद परिजनों की मुलाकात हो सकी। गुरबख्शगंज थाने के प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है क्योंकि अब यह मामला सीबीआई जांच के तहत आ गया है। ट्रक मालिक देवेंद्र पाल से बुधवार को उनकी पत्नी सुमन पाल और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात हो पाई, जबकि ड्राइवर और क्लीनर के परिजन उनसे नहीं मिल पाए। परिजन पिछले कई दिन से इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन गुरुबख्शगंज थाने के इंचार्ज राकेश कुमार सिंह ने बताया कि ड्राइवर और क्लीनर को मंगलवार शाम को ही गिरफ्तार किया गया और बुधवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद जेल भेजा गया। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर पर 302 और 304 समेत कई धाराओं में FIR दर्ज की गई है। ऐसी आशंका है कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश है, क्योंकि इसमें कार सवार जिन दो महिलाओं की मौत हुई है वो उन्नाव रेप मामले में गवाह थीं और कार पर ही रेप पीड़ित लड़की और उसके वकील भी सवार थे। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ट्रक पर फतेहपुर का नंबर था, ट्रक मालिक और ड्राइवर फतेहपुर के थे और कुलदीप सेंगर का पैतृक घर भी फतेहपुर में है। लेकिन आशंका को पुष्ट करने वाला जो सबसे बड़ा कारण था वो ये कि ट्रक का नंबर मिटाया गया था। ट्रक मालिक देवेंद्र पाल के भाई नंदकिशोर ने इसकी वजह ये बताई।
फाइनेंस में गाड़ी थी, फाइनेंस के कुछ किस्तें टूटी हुई है तो छिपाने के लिए फाइनेंसर तमाम से टहलते हैं, घूमते हैं कि गाड़ी हमारी पकड़ी न जाए। बस बात यह है और कोई बात नहीं।
देवेंद्र पाल के समाजवादी पार्टी से भी संबंध बताए गए, लेकिन नंदकिशोर ने कहा कि समाजवादी पार्टी में देवेंद्र नहीं बल्कि वो खुद थे। घटना के एक दिन बाद यानी सोमवार तक राज्य पुलिस के आला अधिकारी भी यही मानते रहे कि यह महज एक दुर्घटना थी, लेकिन मामले को बढ़ता देख इसके पीछे साजिश होने संबंधी FIR लिखी गई जिसमें 10 लोग नामजद हैं। अगले दिन इसकी जांच CBI से कराने की सिफारिश की गई। दो लोगों की जान लेने वाली ये घटना हादसा थी या फिर साजिश, ये CBI की रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा। समीर आत्मज मिश्र, BBC फतेहपुर।
और अब बात ट्रिपल तलाक बिल की। ट्रिपल तलाक बिल को संसद से मंजूरी मिल चुकी है, अब सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने बाकी हैं। BJP इसे अपनी बड़ी कामयाबी बता रही है तो वहीं विरोध की आवाज़ें भी उठ रही हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ज़मीनी स्तर पर इस कानून का कोई असर होगा और मुस्लिम समुदाय में क्या सामाजिक सुधार को लेकर एक बहस शुरू हो गई है। इसी पर BBC संवाददाता संदीप राय ने BBC उर्दू के हमारे साथी शकील अख्तर से बातचीत की।
पार्लियामेंट में तो लोगों ने अपनी बातें रखी हैं और कई मुस्लिम वक्ता भी थे जो मेंबर्स थे, उन्होंने अपनी बातें कहीं। किसी ने कहा कि सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों सज़ा का प्रावधान किया जा रहा है, कई ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। लेकिन बात यह है कि आप सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि ग्राउंड पर यह पहला मौका है कि इतना बड़ा कदम जो है वो समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से रिलेटेड संबंधित उठाया गया है, लेकिन इसके बावजूद पूरे इंडिया में कहीं पर भी कोई ऑर्गेनाइज्ड कोई प्रदर्शन या कोई ऐसा उसका विरोध कहीं सामने नहीं आया है। उलमा वगैरह की तरफ से आया है, कुछ तंजीमों ने इसका विरोध किया है, जो अमूमन धार्मिक तंजीमें जब भी कोई भी सुधार कदम उठाएंगे आप कहीं पर भी इस तरह के जो सामाजिक मामले हैं, सिविल मामले हैं, तो उसमें इन ऑर्गेनाइजेशन से और धार्मिक उलमा से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो करेंगे ही। तो इसका कोई ठोस कहीं पर नहीं, बल्कि इसके बारे में लोगों की राय बटी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं की जो है संगठन पिछले कुछ सालों में वजूद में आए हैं और उन्होंने काफ़ी कैंपेन किया था कि इस तरह का जो है सुधार लाया जाए, क्योंकि वो सफ़र कर रही हैं, उनकी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं है। तो इस लिहाज से ऐसा नहीं है, इसमें औरतें जो है ये महसूस कर रही हैं कि एक अच्छा कदम है, लेकिन उनकी कोई आवाज़ नहीं है कि जो ये पता चल सके कि जो लोग इसके समर्थन में हैं उनकी तादाद कितनी है। लेकिन इसका समर्थन में, इसके विरोध में लोगों का ना आना, ऑर्गेनाइज ना हो पाना, इससे ये पता चलता है कि इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है।
मोदी सरकार ने इस बिल के पीछे अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी एक तरीके से देखा जाए, आखिर BJP के एजेंडे में इसकी इतनी अहमियत क्यों?
देखिए, अगर आपको याद होगा तो ये बिल जो है पिछली जो मोदी की हुकूमत थी उस सरकार में इस पर बहस हुई थी, लेकिन उसमें आ नहीं सका। आते ही इन्होंने अपने जो इलेक्शन का मैनिफेस्टो था उसमें इसको प्रोमिनेंटली उन्होंने शामिल किया था। ये बिल सुधार से ज़्यादा, अगर देखा जाए मुस्लिम समुदाय में सुधार से ज़्यादा इसका राजनीतिक नेचर भी है, और राजनीतिक इसका पहलू ये है कि मोदी सरकार अपने हिंदू हामियों को ये दिखाना चाहती है कि देखिए कांग्रेस ने दशकों की अपनी सत्ता में मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स के वजह से जो काम नहीं कर सकी वो हमने कर दिखाया, और इसका बहुत ज़बरदस्त इसका राजनीतिक फ़ायदा मोदी गवर्नमेंट के होगा। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात वो है वो ये है कि BJP की जो हुकूमत है उसने ये देखा कि इतनी आसानी से और इतनी स्मूथली ये जिस तरह से बिल पास हुआ है उससे उन्हें काफ़ी एक रास्ता नज़र आता है। उनके एजेंडे में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है जो यूरोप और अमेरिका जैसे मुल्कों में है कि पूरे चाहे जिस धर्म के हों आप सबके लिए एक ही तरह का सिविल कोड होगा, वो BJP के एजेंडे में है। उन्हें लगता है कि शायद अब रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे वो रास्ता भी उनका खुल रहा है, तो वो इन्होंने इसमें वाटर टेस्ट किया है और बहुत मुमकिन है कि वो आने वाले दिनों में ये इस मामले पर भी इस देश में बहस छिड़े और यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ ये लोग बढ़ाएं।
ये थे बीबीसी उर्दू के हमारे साथी शकील अख्तर और उनसे बात कर रहे थे संदीप राय। और अब अखबारों की समीक्षा का वक्त हो चुका है। सिंधु बताइए क्या कहते हैं आपके अखबार।
उन्नाव, जोमैटो और कैफे कॉफी डे, ये तीन खबरें हैं जो सभी अखबारों में प्रमुखता से छाई हुई हैं। अगर हम इंडियन एक्सप्रेस देखें तो अखबार लिखता है कि आज उन्नाव बलात्कार मामले से जुड़ी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी रंजन गोगोई की टेबल पर होगी। दैनिक जागरण कहता है कि जस्टिस गोगोई इस बात से नाराज हुए कि पीड़िता की लिखी चिट्ठी उन तक पहुंचने में इतनी देरी क्यों हुई। अमर उजाला में खबर है कि उन्नाव मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और मामले की सीबीआई जांच भी शुरू हो गई है, जैसा कि हम रिपोर्ट में सुन रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि मोटर व्हीकल बिल कल राज्यसभा में भारी बहुमत से पारित हो गया। ये विधेयक पिछले 2.5 साल से लंबित था और अब इसके कानून बन जाने के बाद यातायात नियम काफी सख्त हो जाएंगे
और आप अगर तेज गाड़ी चलाएंगी तो आपको
जुर्माना बहुत बढ़ा दिया गया
है। जुर्माना आपको लग सकता है।
जी इकबाल, जैसे कि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना पहले 2,000 था, अब 10,000 हो गया है। और फोन पर बात करते वक्त या फिर बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 1,000 जुर्माना बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है 1,000 से। और नवभारत टाइम्स में जोमैटो के उस मुसलमान डिलीवरी बॉय का जिक्र है, उसकी खबर है जिसके खाना ले जाने पे एक शख्स ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। इस डिलीवरी बॉय का नाम है फयाज और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस पूरे घटनाक्रम पे दुख जताया है। उन्होंने बताया कि जब वो कस्टमर के घर पहुंचे और फ़ोन किया तो फ़ोन उठा, लेकिन ऑर्डर करने वाले ने बताया कि उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। अब उनका कहना है कि हमें इससे बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं क्योंकि हम गरीब हैं। और उस व्यक्ति ने जोमैटो को ट्वीट भी कर दिया था कि वो मुसलमान का पहुंचाया खाना नहीं खा सकते, जिसके जवाब में जोमैटो के संस्थापक ने कहा कि वो विविधतापूर्ण भारत में यकीन रखते हैं और इस वजह से अगर उनका कोई ग्राहक खोता भी है तो उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता।
वायरल इस पर सोशल मीडिया
बहुत तारीफ हो रही है जोमैटो की।
पूर्व केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी कहा है कि वो जोमैटो से खाना ऑर्डर करना चाहते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सिंधु आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब बात दुनिया जहान की। दुनिया जहान में आज बात इसराइल की, जहां एक पखवाड़े के बाद संसदीय चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव इसराइल के कद्दावर नेता बिन्यामिन नेतन्याहू का राजनीतिक भविष्य तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही और भी कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। चुनाव में अभी से कई रंग नजर आने लगे हैं, जिनमें बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई पोस्टर भी शामिल हैं। सुनिए संदीप सोनी की ये रिपोर्ट।
दुनिया जहान। भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर घनी आबादी वाला इसराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक आबादी यहूदियों की है। वर्ष 1948 में एक देश के तौर पर अस्तित्व में आने के बाद फलस्तीनियों और पड़ोसी अरब देशों के साथ इसराइल का जमीन के उस हिस्से के लिए संघर्ष होता रहा है जिसे यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों ही पवित्र मानते हैं। फलस्तीनियों के साथ संघर्ष और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं की वजह से इसराइल में हमेशा एक ऐसा राजनीतिक वातावरण रहा जिसने देश में अस्थिर गठबंधन सरकारों को जन्म दिया। दक्षिण पंथी लिक्विड पार्टी के नेता बिन्यामिन नेतन्याहू इसराइली नेताओं की कड़ी में इस समय सबसे बड़ा नाम है, जो बीते 10 वर्षों से प्रधानमंत्री की शक्ल में सत्ता पर काबिज रहे हैं।
The border will be different than the one that existed on June 4th, 1967. Israel will not return to the indefensible.
सितंबर में होने वाला चुनाव नेतन्याहू के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। यरूशलम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा बताते हैं।
नेतन्याहू के खिलाफ अभी 4 मामलों पर तहकीकात चल रहा है। पुलिस ने उन्हें इंडाइट करने के लिए रेकमेंड कर रखा है। उनकी तरफ से जो प्रस्तुति हुई है अटॉर्नी जनरल को, उसमें कहा गया है कि इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है और अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने 2 अक्टूबर का तारीख तय किया है जिस दिन उनकी सुनवाई होगी और उसके बाद वो फैसला करेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो या ना हो। अगर वो चुनाव में जीतते हैं तो जाहिर है कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा वो फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उसका एक दबाव अपने आप बनेगा इस कानूनी कार्रवाई पर।
इससे पहले अप्रैल में हुए आम चुनावों में नेतन्याहू की कंजर्वेटिव लिक्विड पार्टी को संसद की 120 सीटों में से 35 सीटें मिली थीं, लेकिन कम सीटों के बावजूद बाकी दक्षिणपंथी पार्टियों के समर्थन से नेतन्याहू को सरकार बनाने का मौका मिला। यूं तो नेतन्याहू को गठबंधन बनाने में माहिर माना जाता है, लेकिन अप्रैल में हुए चुनावों के नतीजे आने के बाद नेतन्याहू और उनकी लिक्विड पार्टी गठबंधन करके भी सरकार बनाने से महज एक सीट दूर रह गई। इसकी वजह बना एक मिलिट्री ड्राफ्ट लॉ, जिसने नेतन्याहू के दक्षिणपंथी गठबंधन को सेक्युलर, अल्ट्रा नेशनलिस्ट और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स धड़ों में बांटकर सत्ता में आने से सिर्फ एक कदम पहले रोक दिया।
काले पोशाकधारी जो यहूदी दिखते हैं, जो न्यूयॉर्क में भी काफी देखे जाते हैं, वो जो समुदाय है तकरीबन उसकी आबादी 10% है इसराइल में, लेकिन राजनीतिक पकड़ उनकी बहुत मजबूत है। उनका समर्थन बड़ा अहम होता है सरकार बनाने की प्रक्रिया में, लेकिन उनका एक जो सबसे बड़ा जो डिमांड हमेशा होता है उनकी ओर से ये मांग की जाती है कि जो लोग यशिवा यानी कि जो रिलीजियस सेमिनारी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें छूट दी जाए कि उन्हें आर्मी में सर्व नहीं करना पड़ेगा। काफी समय से ये छूट उन्हें मिली हुई है। इस मुद्दे पर लिबरबान जो कि राइट विंग के ही पार्टी के नेता हैं, उन्होंने मांग की कि इसको हटाना होगा। दरअसल नेतन्याहू और लिबरबान दोनों के पहले काफी अच्छे संबंध रह चुके हैं, लेकिन बीच में थोड़ी अनबन हो गई और माना यह जा रहा है कि यह मुद्दा अहम नहीं था, उन्हें बस तलाश थी कि वो नेतन्याहू को किसी तरह से गिरा सके। तो महज एक सीट की कमी से नेतन्याहू, उनकी जीत जो है वो अधूरी रह गई।
इस अधूरी जीत को नेतन्याहू अब की बार हर कीमत पर पूरा करना चाहेंगे। नेतन्याहू इस चुनाव में मध्य पूर्व के मौजूदा हालात को देखते हुए देश की सुरक्षा के लिए खुद को एक मजबूत और दमदार नेतृत्व के तौर पर पेश कर रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष नेतन्याहू को उनकी कथित विभाजनकारी आंतरिक नीतियों के आधार पर और उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की बुनियाद पर घेरने की कोशिश कर रहा है। इसराइल में भारत के राजदूत रहे नवतेज सरना बताते हैं,
निर्णायक चुनाव होगा क्योंकि अब वो इसराइल के सबसे लंबे अरसे रहने वाले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। डेविड बेन गुरियन का जो रिकॉर्ड था उसको भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया, और जो पिछली इलेक्शन हुई थी उसमें नेतन्याहू साहब को ऐसा करना पड़ा कि फिर से इलेक्शन हो। ये कभी पहले हुआ नहीं इसराइल की पॉलिटिक्स में। तो अब एक ऐसा समय आ गया है कि इसराइली पब्लिक को डिसाइड करना पड़ेगा कि इनको आगे प्रधानमंत्री चुनना है कि नहीं। तो अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि बीबी नेतन्याहू का कोई अल्टरनेटिव उभरना चाहिए, लेकिन अभी कोई दिखता नहीं।
इसराइल के चुनाव में इस बार एक नया रंग नजर आया है। दुनिया भर के बड़े नेताओं के साथ अपने अच्छे संबंधों को बिन्यामिन नेतन्याहू ने चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की है, और इसके लिए बड़े बड़े चुनावी बैनर्स में उन्हें अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाया गया है।
जो उसमें कैप्शन चल रहा है उसके साथ वो ये है कि इन अनदर लीग। तो जैसे नेतन्याहू एक ऐसे वो जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मैं एक ऐसे स्तर का लीडर हूं जिसका ग्लोबल रीच है, जैसे देखिए प्रधानमंत्री मोदी का है, और ऐसा आदमी हूं जो अपने देश के लिए एक विजन रखता है, जो वो अपने आप को एक ग्लोबल लीडर की तरह प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए ये जो हमारे प्रधानमंत्री के साथ उनकी काफी अच्छी केमिस्ट्री बनी थी जब प्रधानमंत्री मोदी इसराइल गए थे, आपको याद होगा कि उनकी बड़ी अच्छी फोटोग्राफ्स आई थी दोनों की, और नेतन्याहू भारत भी आए थे उसके बाद। तो इसका वो चुनाव में अपनी इमेज बनाने के लिए एज ए ग्लोबल लीडर उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं।
वर्ष 1996 में नेतन्याहू ने जब पहली बार चुनाव जीता, आलोचकों ने यह कहते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया था कि नेतन्याहू के पास अनुभव नहीं है। लेकिन जब इसी साल अप्रैल में हुए चुनाव में नेतन्याहू ने जीत का डंका बजाया तो उन्हें जादूगर कहकर सराहा गया। तेल अवीव में जन्मे, अमेरिका में पले बड़े नेतन्याहू 18 साल की उम्र में इसराइल लौटने के बाद सेना की कमांडो यूनिट में कैप्टन के तौर पर शानदार 5 साल बिताकर आगे की पढ़ाई के लिए वापस अमेरिका गए और अमेरिकी टेलीविजन पर धारा प्रवाह अंग्रेजी में इसराइल की पैरवी करने वाले जाने पहचाने चेहरे बन गए। अमेरिका से दोबारा इसराइल वापसी करके घरेलू राजनीति से शुरुआत करते हुए लिक्विड पार्टी के रास्ते संसद का सफर तय करते हुए नेतन्याहू ने सबसे पहले उप विदेश मंत्री का ओहदा हासिल किया, फिर पार्टी के अध्यक्ष बने। लेकिन निर्णायक मोड़ आया तब जब प्रधानमंत्री इत्ज़ाक रॉबिन की हत्या के बाद वर्ष 1996 में उन्हें इसराइल में सीधे चुनाव के जरिए चुना गया पहला प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। उसके बाद सिर्फ एक बार 1999 के चुनाव में उन्हें अपने ही एक पूर्व कमांडर एहुद बराक से हार कर सत्ता से बाहर होना पड़ा। लेकिन इसके बाद साल 2009 में प्रधानमंत्री के तौर पर वापसी करके नेतन्याहू इसराइल की सत्ता पर एक तरह से छा गए। यही उनकी विरासत है जो इस चुनाव में दांव पर लगी है। संदीप सोनी, बीबीसी, दिल्ली।
तो दुनिया जहान का ये अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिखिएगा, आपके ख़तों का हमें रहेगा इंतज़ार। और अब वक्त हो गया है खेल समाचार का।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बैडमिंटन के कोर्ट पर, जहां पर साइना नेहवाल ने पहले मुकाबले में फतह हासिल कर दूसरे राउंड में जगह बना ली है और आज उनका मुकाबला होगा जापान की खिलाड़ी सायाका ताकाहाशी के साथ। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:15 पर होगा। तो वहीं पुरुष वर्ग की बात करें तो साई प्रणीत भी दूसरे राउंड में प्रवेश कर चुके हैं और उनका मुकाबला भारतीय खिलाड़ी शुभांकर डे के साथ होगा। किदांबी श्रीकांत भी अपने दूसरे राउंड में प्रवेश कर चुके हैं और उनका मुकाबला थाईलैंड के खिलाड़ी खोशिद पेट प्रताप के खिलाफ होगा। और एचएस प्रणय और पारुपल्ली कश्यप भी दूसरे राउंड में प्रवेश कर चुके हैं और इनका मुकाबला भी आज ही होना है। जहां साई प्रणीत का मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम को 6:30 होगा, तो किदांबी श्रीकांत का मुकाबला 4:00 और एचएस प्रणय का शाम को 8:20 पर, पारुपल्ली कश्यप का शाम को 5:00 होगा। और अब आपको लेकर चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर, जहां पर आज शुरू होगी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज। विश्व कप जीतने के बाद इंग्लैंड के सामने ये बड़ी चुनौती है जहां वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। पहला मुकाबला बर्मिंघम में हो रहा है और इसी के साथ आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत भी होगी। टेस्ट चैंपियनशिप के आने से खेल के लंबे प्रारूप में निश्चित तौर पर रोमांच बढ़ेगा। इस चैंपियनशिप का अंत 2021 में जुलाई के महीने में होगा, जिसकी विजेता एक टीम होगी। तो वहीं एशेज सीरीज की अगर बात करें तो इंग्लैंड की इस टीम में जोफ्रा आर्चर को जगह नहीं मिली है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि जोफ्रा आर्चर पहले ही मैच से अपना टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं, लेकिन अब उन्हें अपने टेस्ट डेब्यू के लिए इंतजार करना होगा। आपको बता दें, इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच के लिए 14 सदस्यीय टीम जारी की थी, जिसमें जोफ्रा आर्चर, ओली स्टोन और सैम क्यूरन को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली है। पहले टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग 11 है रॉरी बर्न्स, जेसन रॉय, जो रूट, जो डेनली, जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, जॉनी बेस्टो, मोइन अली, क्रिस वोक्स, स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन।
खेल समाचार सुना रही थी सूर्यांशी पांडे। और अब प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने मुख्य ब्याज दरों में 0.25% की कटौती का ऐलान किया है। इसराइल की सरकार ने अपने एक चौंकाने वाले फैसले में कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 700 फलस्तीनी घर बनाने की मंजूरी दे दी है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के गोमा शहर में इबोला की वजह से दूसरे व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। अमरीकी मीडिया में खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन की मौत हो गई है। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ने बुधवार को होने वाले मिसाइल लॉन्च की बात स्वीकार की है। अमरीका ने ईरानी विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ पर प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि जरीफ एक प्रोपोगेंडा मिनिस्टर हैं जिन्होंने ईरानी नागरिकों के उत्पीड़न का समर्थन किया है। वहीं जरीफ ने कहा है कि उन पर अमेरिका के प्रतिबंधों का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईरान के बाहर उनकी कोई संपत्ति या एजेंडा नहीं है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली अजीत सारथी ने। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे कार्यक्रम दिन भर में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 24 घंटों आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।